लेकिन अगर सैयद शोहदा के साथ मीरा में आकर के देखा जाए तो अब यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं है कि वो वाहिद तरीन पाकीज़ा तरीन शजराए नसब का इंतखाब किया गया, वो कि जिसके पास काबे की चाबियां हैं, वो कि जो जमजम के द्वारा खोदने वाले हैं, वो कि जिनके पास उस वक्त दीन इब्राहिमी की बकाया जात मौजूद हैं, उस नस्ल में सैयद शोहदा को करार दिया। तीसरा मरहला क्या था हमारी गुफ्तगू का? तीसरा मरहला हमारी गुफ्तगू का ये था कि इब्राहिम की वालिदा वालिदा को गर्चे सख्तियां उठानी पड़ी लेकिन उन सख्तियों का तकाबुल और मुकाबला नहीं किया जा सकता उन सख्तियों से जो फातिमा ज़हरा ने उठाई। दो एतबार से, एक एतबार क्या है कि वो सख्तियां भी ज्यादा थी कि जो फातिमा ज़हरा ने उठाई, और दूसरा इब्राहिम की वालिदा माजिदा अगरचे सख्तियां उठा रही है लेकिन कोई और रास्ता नहीं है सख्तियां उठाने के अलावा, लेकिन फातिमा ज़हरा के यहाँ आकर के देखे तो दास्तान बिल्कुल बरअक्स नजर आती है। यहाँ पर इख्तियार का मसला नहीं है, इख्तियार होने के बावजूद रिजल्ट में रजाइत व तस्लीम अल अमर की मंजिलत है कि अगर इशारा करे तो रिजवान जन्नत कपड़े लेकर के चला आए, जन्नत से रिजा आ जाए, जन्नत से खाना आ जाए, लेकिन इस इख्तियार के बावजूद कि जो इब्राहिम की वालिदा माजदा की यहाँ नहीं था, उस इख्तियार के बावजूद भी फातिमा ज़हरा ऐसे जिंदगी गुजार रही है कि अगर रसूलुल्लाह की उनकी जिंदगी गुजारने के अंदाज को देख रहे हैं तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस मरहले तक हमारी गुफ्तगू गुज़िश्ता चार पांच दिनों में पहुंची थी। आज अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, परवरदिगार-ए-मुतआल ने इंसान की जो तरबियतगाह करार दिया है वो माँ की गोद को करार दिया है, ताकि माँ की गोद को जगह है कि जहां से हम अपने मुकर्रब बंदों को तरबियत करके मुआशरे में लेकर के आएंगे। परवरदिगार-ए-मुतआल ने उस जगह को तरबियतगाह करार दिया है, माँ को मुरब्बी करार दिया है, माँ को पालने वाला करार दिया है, ताकि अगर अच्छा इंसान बनकर के निकलेगा तो वो आगोश मादर से बनकर के निकलेगा, और अगर बुरा इंसान बनकर के निकलेगा तो आगोश मादर से। तरबियत की अहम तरीन जिम्मेदारी यहाँ पर उलमा बयान करते हैं कि ये जो जिम्मेदारी परवरदिगार-ए-मुतआल ने माँ को दी है, दर हकीकत माँ को परवरदिगार-ए-मुतआल ने अपना खलीफा करार दिया है। ये जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? परवरदिगार की जिम्मेदारी है तरबियत करना। परवरदिगार अपना काम है कि जो माँ से ले रहा है, परवरदिगार अपना काम है कि जो माँ से ले रहा है कि माँ को तरबियत की जिम्मेदारी दे रहा है। अब यहाँ पर मैं एक मंजिल के लिए और एक मरहले के लिए थोड़ा सा अपने मौजू से अलग होकर के एक शुभे का जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद दोबारा अपने मौजू में वाकिल हो जाऊंगा। देखिए आज जो फेमिनिज्म के नाम पर जो एक तहरीक शुरू की गई है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ औक़ात मोमिनीन के घरानों में, अहले बैत के मानने वालों के घराने में इस तरह की बातें नजर आती हैं। सबसे पहला अदब यह है कि अगर कोई इसको समझना चाहता है तो इसकी तारीख को पढ़े कि फेमिनिज्म आया कहां से। फेमिनिज्म दो तहरीकों का नतीजा है। अब थोड़ी सी गुफ्तगू शायद इस मुकाम पर मुश्किल हो जाए, लेकिन दो तहरीकों का नतीजा है फेमिनिज्म। एक जो इस्लाह-ए- दीनी की तहरीक कलीसा के अंदर शुरू हुई थी, जिसे रेनेसांस कहा जाता है, उस रेनेसांस की तहरीक का नतीजा है फेमिनिज्म की तहरीक। यानी आप जब जाकर के तारीख मसीहियत के अंदर पहली दफा देखेंगे कि लफ्ज फेमिनिज्म कहां पर इस्तेमाल किया गया, तो जो रेनेसांस की जो तहरीकें थी उसमें एक तहरीक थी फेमिनिज्म। यानी अगर अकायद के एतबार से और नजरियात के एतबार से देखा जाए तो इस्लाह-ए- दीनी की तहरीक में एक जुज है फेमिनिज्म। दूसरी तरफ से आप आकर के देखिए तो यह आपको उस वक्त पूछ पाता हुआ नजर आएगा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस जमाने को कहा जाता है कि जब छोटे छोटे कारखानों को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर तब्दील किया गया। उससे पहले बड़े बड़े कारखाने और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का कोई तसव्वुर नहीं था। तसव्वुर यह था कि एक घर के अंदर मिसाल के तौर पर एक प्लॉट पर एक कारखाना लगाया जाता था, वो इतना तौलीन करता था जितना उस इलाके के लिए जरूरत होता था और लोग उसे खरीदते थे। लेकिन एक वो जमाना आया कि कहा कि नहीं, अब हम शहरों की सतह पर, मुल्कों की सतह पर और दुनिया की सतह पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, दुनिया की सतह पर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ये वो मकाम था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई और उसके पीछे वो कैपिटलिज्म का फिक्र और उसकी सोच कि किस तरह से सारी दुनिया के पैसे को जमा करके चंद खानदानों तक महसूस किया जाए, मालदार को मजीद मालदार बनाया जाए, गरीब को मजीद गरीब बनाया जाए, और उस सोच के तहत ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। आप अजीब तसव्वुर करें, पाकिस्तान या बर सगीर या ईरान या इस तरह के जो ममालिक हैं उसमें और अमेरिका यूरोप के अंदर आप मुकाबला कीजिए कोरोना के जमाने के अंदर। एक बात आपको कोरोना के जमाने में गर्व में नजर आएगी, लेकिन कोरोना की शिद्दत के अंदर आपको बर सगीर के अंदर, ईरान के अंदर और इन ममालिक के अंदर, जिसे कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड, कहते हैं कि आप अभी तरक्की याफ्ता नहीं, आप तरक्की पसीर हैं, आप अभी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत तरक्की पसीर ममालिक में आपको चीज नजर नहीं आएगी। वो क्या है? जब कोरोना उठ पर था, आपने इस बात को देखा, खबरों में देखा कि हमला किया गया सुपर स्टोर्स के ऊपर और बड़े बड़े स्टोर से लोग चुरा करके माल लूट मार करके लेकर के जा रहे थे। लेकिन इस तरह के वाकयात बल्ले सफीर में और तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में, तरक्की पसीर ममालिक में आपको कब नजर आएंगे? इस पर जैसे ही वाकया पेश आया तो फौरी तौर पर इस पर तजिया और तहलील शुरू किया गया। एक तजिया उसमें यह था कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा है, और उस तजिया करने वाले ने इस तजिये को लिखा कि चूंकि आपने इलाके और मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया है और आप बड़े बड़े सुपर स्टोर की तरफ चले गए हैं, तो अब एक सुपर स्टोर का जो डोमेन है वो इतना वसी हो गया है कि अब हर एक को खौफ लगा रहता है कि कहीं मुझे इस स्टोर से वो चीज मिलेगी या नहीं। इसलिए उसने उस पर हमला किया ताकि इससे पहले कि कोई और लेकर के चला जाए पहले। जबकि जो तरक्की पसीर ममालिक है, चूंकि उनके अंदर अब तक छोटी गली की दुकानों का कॉन्सेप्ट मौजूद है, इसलिए उस शख्स को आराम और इत्मीनान था कि अगर मैंने आज नहीं भी लिया तो जिसकी दुकान है मैं उसे जानता हूं, जाकर के अगर आधी रात को भी कहूंगा तो मुझे वो चीज दे देगा। ये वो नतायज और असरात है जो दुनिया आज देख रही है। खैर, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज हुआ, फौरी तौर पर जो दूसरा मसला इनके लिए पेश आया वो क्या था? वो था चीप लेबर का मसला। चीप लेबर का मसला क्या था? हमें अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दी और उसमें अब काम करने वाले हजारों वर्कर्स की और मजदूरों की जरूरत है। मजदूर कहां से आएंगे? अगर मर्दों को मजदूरी के तौर पर लिया जाए और भर्ती किया जाए तो वो मुंह मांगे कीमत वसूल करते हैं। ये वो मुकाम था कि जहां पर फेमिनिज्म की उस तहरीक को कि जो रेनेसांस के नतीजे में वजूद में आई थी लेकिन उसने शिद्दत इख्तियार नहीं की थी, उस तहरीक को, रेनेसांस के नतीजे में वजूद में आने वाली उस तहरीक को दोबारा कैपिटलिस्ट माफिया की तरफ से उरूज दिया गया और कहा गया कि इस तहरीक के जरिए से हम अपने लिए चीप लेबर का इंतजाम कर सकते हैं। आगे क्या किया जाए? खवातीन को उनके हुकूक के नाम पर, खवातीन को उनके हुकूक के नाम पर घरों से बाहर निकालो और मर्दों के मुकाबले में ये बहुत कम पैसों में तुम्हें मजदूर मिल जाएंगे अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और अपने कारखानों के लिए। ये वो पहला मौका था। नजरी तौर पर फेमिनिज्म पहले से मौजूद था, लेकिन अमली तौर पर ये पहला मौका था कि जब उस कैपिटलिज्म के माफिया ने इस्तेफादा किया और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चीप लेबर के खातिर खातून से कहा गया कि ऐ खातून, अपने हिजाब को, अपने पर्दे को, اپنی عفت کو اپنی پاکیزگی کو ایک کنارے پر رکھو اور آ جاؤ بسطِ معاشرہ کے اندر. اور اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے وجود پر ڈھانک ڈالنا چاہتا ہے. یہ وہ پہلا مقام تھا زندہ نگرانی کا کہ جب خواتین کو لایا گیا. اسی لیے آپ آج جا کر کے دیکھیے کہ مسیحیت کے اندر عیسائیت کے اندر بھی جو خاتون کا کانسیپٹ ہے, اگر آج 100-150-200 سال پہلے چلے جائیے اور اس وقت کی پینٹنگ اٹھا کر کے دیکھیے تو اس وقت بھی عیسائیت اور مسیحیت کے اندر بھی اگر خاتون کی پینٹنگ بنائی جاتی ہے تو اس کے سر پر مکھنا رکھا جاتا ہے. حضرت مریم کی اگر پینٹنگ بنائی جاتی ہے آج تک تو وہ محجبہ اور حجاب والی پینٹنگ بنائی جاتی ہے. یعنی یہ حجاب صرف اسلام میں نہیں تھا بلکہ یہ اس زمانہ قریب سے پہلے تمام تر ادیان میں تھا. اسی لیے قرآن مجید کی تو آیت آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو حجاب کے لیے آئی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ حجاب کرو بلکہ یہ بتایا ہے کہ کیسے حجاب کرنا. یعنی حجاب اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھا لیکن چونکہ کان کھلے رکھے جاتے تھے, سینہ کھلا رکھا جاتا تھا, اسلام نے کہا کہ نہیں کانوں کو چھپاؤ, سینے پر بھی چادر ڈالو. سورہ مبارکہ نور کی جو آیت ہے, خیر بس یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور چیپ لیبر کی خاطر خاتون کو نکالا گیا اس کے حقوق کے نام پر. اب ایک طرف آپ اس نظریے کو رکھیے اور دوسری طرف آپ اس نظریے کو رکھیے کہ جو اسلام خاتون کے بارے میں دیتا ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اے خاتون ہم نے تمہارے لیے اتنی بڑی ذمہ داری کو رکھا ہے, یہ نہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم گھر سے باہر آؤ, نہیں, تمہاری ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ ہم تمہیں گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں. میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں, جب کوئی سائنسی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تحقیق اپنے آخری مرحلے پہ پہنچتی ہے تو اس وقت جو اس سائنس کا ادارہ ہوتا ہے وہ ان سائنٹسٹ کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے اب یہ تحقیق آخری مرحلے میں پہنچ گئی, اب یہ ثمر دینے والی ہے, اب اس کا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے, اب ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ گھر جائیں, کوئی اور کام کریں, کسی اور کے ساتھ گفتگو کریں, کوئی اور موضوع آپ کے درمیان زیر بحث آئے, نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب یہ اتنے حساس پوائنٹ تک آ گئی ہے تحقیق کہ اب آپ کو دنیا سے کٹنا پڑے گا اور اس تحقیق پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم بہت ہی بہترین ہوٹل کے اندر مثال کے طور پر بہت ہی آسائشوں والا کمرہ لے کر کے دیں گے, آپ اس پہ رہیے, آپ کے ساتھ آپ کے سائنٹسٹ اور جو آپ کے ہم شغل ہیں جو آکوپیشن میں آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ صبح سے لے کر شام تک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسی پر گفتگو کریں گے. کہتے ہیں میرے کھانے کا کیا ہوگا؟ ہم دے دیں. میری رہائش کا کیا ہوگا؟ ہم دے دیں. میرے لباس کا کیا ہوگا؟ ہم دیں گے. میرے بچے کا کیا ہوگا؟ سب کچھ ہم فراہم کریں گے. لیکن تمہاری ذمہ داری, چونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اس لیے ہم تمہاری اٹینشن کو کہیں ڈائیورٹ ہونے نہیں دیں گے, صرف اسی موضوع پر اٹینشن رکھو. اسلام خاتون کے لیے اس منصب اور مقام کا قائل ہے. اسلام کہتا ہے اے خاتون یہ اہم ذمہ داری تربیت انسان کی, کیونکہ آئندہ کا معاشرہ تیرے دم سے ہے, تو جیسے انسان تربیت کرے گی آئندہ کا معاشرہ ویسا ہوگا. یہ اہم ذمہ داری ہم تیرے ذمہ لگا رہے ہیں, تیری آغوش تربیت گاہ بنا رہے ہیں آئندہ آنے والے پورے معاشرے کی. اب یہ خاتون کہے پروردگار میرے کھانے کا کیا ہوگا؟ کہ اس کی ذمہ داری ہم تیرے شوہر کے ذمہ لگا. میرے مکان کا کیا ہوگا؟ کہ اس کی ذمہ داری ہم تیرے شوہر کے ذمہ لگا. کہ میرے چھت کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری شوہر پر ہے. لباس کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری شوہر پر ہے. نان نفقے کا کیا ہوگا؟ ذمہ داری شوہر پر ہے. کہ اگر تربیت اولاد میں سے وقت بچ جائے تو اخلاق کی خاطر اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے گھر میں, لیکن گھر کے تمام تر امور, باہر کے تمام تر امور نہیں, گھر کے تمام تر امور بھی ہم مرد کی ذمہ لگا رہے ہیں. تیری صرف ایک ذمہ داری ہے, وہ کیا؟ تیری تمام تر ضروریتوں کا انتظام یہ مرد کرے گا, اس کے بدلے میں تجھ سے کیا طلب کیا جا رہا ہے کہ تو اپنی آغوش میں ایسے انسانوں کی تربیت کر کہ جو آگے بڑھ کر معاشرے کو پازیٹو اور مثبت انداز سے آگے لے کر کے جا سکتے. یعنی آپ ایک طرف یہ فیمنزم کا اور کیپٹلزم کا ایجاد کرتا انڈسٹریلائزیشن کے بعد خاتون کا تصور دیکھیے کہ وہ خاتون کو مزدور بنانا چاہتا ہے वो खातून को लेबर बनाना चाहता है और दूसरी तरफ इस्लाम का तसव्वुर देखिए कि इस्लाम खातून को लेबर बनाना नहीं चाहता बल्कि तमाम तर मसाइल को लेबर करना चाहता है खातून के लिए कि हम तमाम तर मसाइल को तेरे इख्तियार में दे रहे हैं कि शौहर तुझे रोटी बना करके देगा शौहर की जिम्मेदारी है कि तेरे लिए रोटी का इंतजाम करे तेरे लिए लिबास का इंतजाम करे तेरे लिए खाने का इंतजाम करे तेरे लिए छत का इंतजाम करे तेरी सिर्फ एक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में से जब बच जाता है तो अल्लाह का तकाजा यह है कि तू उसका हाथ बटा लेकिन जो अव्वलीन जिम्मेदारी है जिसमें तुमने जर्रा बराबर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना वो क्या है तरबियत औलाद और अब इस तरबियत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए परवरदिगार मुताल ने इसे मोहब्बत के रिश्ते के जरिए से मजबूत किया कि तरबियत कब वजूद में आएगी जब मुरब्बी और मुतरब्बी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता साथ होगा इसीलिए माँ को मोहब्बत का पैकर बताया माँ को माँ की कोख से जन्म दिया बच्चे को कि ये तेरा हिस्सा है जिस तरह तू अपने हिस्से से मोहब्बत करती है इस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है और ये वो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का दिया हुआ फेमिनिज्म के मुकाबले में कि ऐ खातून हम तुम्हें मलका बना करके रखना चाहते हैं तुम्हें कोई काम नहीं करना तुमने सिर्फ एक काम करना है वो क्या आइंदा आने वाले मुआशरे की बात दौड़ तेरे सपोर्ट कर रहे तेरे हाथ में दे अब तू अपनी कौम से जैसे बच्चे तरबियत करेगी ये मुआशरा उसी सिमट जाएगा आप जाकर के देखिए अब मैं दोबारा अपने मौजू पर पलट करके आता हूँ इस सारे मुकदमे को बयान करने के बाद आप देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिस्सलाम और कर्बला के शहदा के तारीख में जाकर के आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा अहम किरदार आपको नजर आएगा वो माओं का है वजह क्या है वजह यह कि माए वो हैं कि जिन्होंने ऐसे बच्चे तरबियत किए इसलिए आप देखिए कि अगर किसी घर के अंदर मिसाल के तौर पर बाप किसी नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर चला जाए तो माँ घर को संभाल लेती है लेकिन अगर माँ मुनहरिफ हो जाए गुमराह हो जाए और बच्चों की तरबियत पर ध्यान न दे तो अब ये बच्चे मुआशरे के लिए नासूर बन जाते हैं इस्लाम इतनी बड़ी जिम्मेदारी परवरदिगार अपनी जिम्मेदारी खातून के सुपुर्द करके खातून को कह रहा है तुम्हें कुछ और नहीं करना सिवाय इस एक काम के और दूसरी तरफ से ये फेमिनिज्म ये जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये क्या चाहते हैं कि खातून उड़िया हो जा बेलिबास हो जा बेहिजाब हो जा आज आप सदर माशरे के अंदर ना तेरी नामूस महफूज ना तेरी इज्जत महफूज कोई शय तेरी महफूज नहीं है आज आप माशरे के अंदर क्यों कि अगर ये मुआशरे में नहीं आएगी हमारे लिए चीप लेबर का काम कौन करेगा अजीजा ने गिरा दिया बहुत गुफ्तगू है इस मुकाम पर निगाहों के सामने पेश की जा सकती है आप किसी भी ऐसे शख्स से जाकर के मिलिए कि जिसने मार्केटिंग की फील्ड पढ़ी है वो आपको बताएगा कि मार्केटिंग की फील्ड के अंदर एक अहम बात जो पढ़ाई जाती है वो क्या कि वो तमाम तर मुकाम जहां पर पब्लिक डीलिंग है वहां पर खातून को रखा जाए इसीलिए आपको बड़े बड़े अफराद की सेक्रेटरीज मिलेंगी वो खातून मिलेंगी आप जाइए आपको बैंक में जो काउंटर पर बैठने की खवातीन मिलेंगी एयरपोर्ट पर काउंटर पर बैठने की खवातीन मिलेंगी वो सब मर्द नहीं होंगे खवातीन होंगे क्योंकि पब्लिक डीलिंग खवातीन से करवाओ यानी क्या यानी परवरदिगार मुताल ने इसके बदन को जो इस तरह से खल किया है कि मर्द इसी तरफ राजिब होता है इस्लाम ये चाहता था कि तू इसे हिफाजत करके रख पाक दामन रहे और अपने इस वजूद के जरिए से तरबियत औलाद का काम अंजाम दे लेकिन घर क्या चाहता है वो चाहता है तू आप ऐसे मुकाम पर बैठ कि जहां तुझे हर आने जाने वाला तेरी इज्जत पर हाथ डाले हर आने जाने वाला तुझे देखे पब्लिक डीलिंग का मुकाम यानी क्या बिल्कुल चौराहे पर बैठा देते किसी चौराहे पर जो बैठा होता है शख्स शहर आता जाता है वो शख्स चौराहे पर बैठा है क्या हमारे पास चौराहे पर बैठने के लिए कौन है चीप लेबर कौन है कि जो हमारे लिए सस्ते में काम भी करते और जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रैब कर सके कहीं खाते हुए अब इस तरह से अगर देखिए आपको समझ में आएगा कि गर्व खातून को कितना पस्त करना चाहता है और इस्लाम खातून को कितना बुलंद करना चाहता है मेरी तरह गिराने चाहो, दूसरा मरहला मेरे लिए होगा। वक्त खत्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं चूंकि सारा मुकदमा पेश कर चुका हूं तो थोड़ा सा पेश करता हूं। देखिए, जब आप कहते हैं हुकूक, किसी के साथ किसी को उसका हक नहीं मिल रहा, बहुत सारी बात हमारे माशरे में आजकल राय थी, खवातीन को उनके हुकूक नहीं मिल रहे। क्या है खातून का हक? अब सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हुकूक का ताल्लुक सआदत और कामयाबी के साथ किस तरह से। मैं आपके सामने कुछ एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, आप ये कहते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो आजकल दुनिया में एक मसला है, अपॉर्चुनिटी की जो तकसीम है वो आदलाना नहीं है। अमीर का बच्चा जाता है, उसके पास फोन आ जाता है, उसको जॉब मिल जाती है, लेकिन गरीब का बच्चा जाता है उसको जॉब मिल जाता है। अपॉर्चुनिटी की जो तकसीम है वो मुनसिफाना और आदलाना नहीं है इस वक्त माशरे के अंदर, इसीलिए माशरा जुल्म करता है। जुल्म की बुनियाद क्या है? जुल्म की बुनियाद यह है कि जहां पर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जो बढ़ते हुए रास्ते हैं वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होते हैं। यह है जुल्म की इब्तिदा। जुल्म को अगर आप जाकर के देखेंगे माशरे में जुल्म को, उसका जड़ आपको कहां पर नजर आएगी? जहां पर अपॉर्चुनिटीज की मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई, वहां पर नजर आएगी। खैर, अब आप देखिए, आपसे अगर कोई कहे कि खातून को हुकूक नहीं मिल रहे, तो आपका दूसरा सवाल होना चाहिए हक होता क्या है। इस सवाल का आप इस काउंटर क्वेश्चन के जरिए से जवाब दीजिए कि हक होता क्या है। हक का ताल्लुक होता है अपॉर्चुनिटी के साथ। मुझे हक नहीं मिल रहा यानी क्या? यानी मुझे मुसावी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। दो लोग गए एक जैसी सीवी लेकर के जॉब के लिए, एक को जॉब मिल गई दूसरे को नहीं मिली, जिसको नहीं मिली वो कहेगा मेरा हक मुझे नहीं मिला। यानी क्या? क्या इसके लिए ऊपर से फोन आ गया? अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, उसके बाद जिसमें ज्यादा काबिलियत हो और जिसमें ज्यादा सलाहियत हो उसे वो जॉब मिलनी चाहिए। यह है अपॉर्चुनिटी की मुसावी तकसीम। जब अपॉर्चुनिटी की मुसावी तकसीम नहीं होगी तो उसके बाद फिर जुर्म वजूद में आएगा। खैर, सबसे पहले जब आपसे कहा जाए कि खातून को हुकूक नहीं मिल रहे, तो सवाल क्या होना चाहिए कि हक होता क्या है। हक का ताल्लुक है अपॉर्चुनिटी की मुसावी तकसीम के साथ, और अपॉर्चुनिटी की मुसावी तकसीम का ताल्लुक है हदफ और मकसद के साथ। अब ये जरा मेरे साथ कहिएगा इस मौके पर, मैं बहुत जल्दी से पढ़ने से गुजरना चाहता हूं ताकि जो वक्त है उसी के अंदर मसाइल को बयान करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचा सकूं। हक का ताल्लुक है अपॉर्चुनिटी के साथ। अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए? अपॉर्चुनिटी खुद बेजाते कोई चीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी के साथ हमेशा आपको लगाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी बढ़ाए जॉब, अपॉर्चुनिटी बढ़ाए तालीम, अपॉर्चुनिटी बढ़ाए किसी भी शय के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी वसीला और जरिया। जब आपको कहा जाएगा हक नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे हदफ की तरफ जाने के लिए किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मुसावी सुलूक नहीं किया जा रहा। यहां पर रेसिज्म है मिसाल के तौर पर, किसी को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही किसी को कम। ये अपॉर्चुनिटी कम और ज्यादा किस शय के लिए है? अगर वो शय समझ में आ जाएगी तो अपॉर्चुनिटी की तकसीम समझ में आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी की तकसीम समझ में आ जाएगी तो हक समझ में आ जाएगा। अभी बहुत मुश्किल गुफ्तगू है, एक मेंबर से करने वाली गुफ्तगू नहीं है, लेकिन चूंकि हजरत इब्राहिम और इमाम हुसैन की वालिदैन माजिदा के सिर में ये गुफ्तगू आ गई तो मैंने चाहा कि इसको आपके सामने बयान कर दूं। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, इस्लाम ये कहता है कि अपनी सआदत और अपनी कामयाबी के मियार को और स्टैंडर्ड को सही कर लो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद सही होता चला जाएगा। जो दुनिया में कहते हैं कि खातून को हक नहीं मिल रहा, या मिसाल के तौर पर मर्दों को हक नहीं मिल रहा, या फलाह को हक नहीं मिल रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दुनिया की चीजों के लिए हक नहीं मिल रहा। यानी ये कि खातून को बाहर आने की इजाजत तुम नहीं देते, इसका मतलब मर्द को बाहर आने की इजाजत देते हो, इसका मतलब आप इसके हक को गश्त कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल इसके बरक्स बात ठीक होगी। मर्द को घर में रहने का हक गश्त किया जा रहा है, अगर खातून से बाहर आने का हक गश्त किया जा रहा है तो मर्द से घर में रहने का हक गश्त किया जा रहा है। मजम्मत कर रहा है इस्लाम ऐसे मर्द की जो घर में बैठा है, क्यों? ताकि तुम्हारा काम हमने बाहर रखा है, इसका काम हमने घर में रखा है। परवरदिगार ये जो जुल्म है, परवरदिगार स्वीकार करेगा कि नहीं। शुल्क समझना है तो समझो कि अपॉर्चुनिटीज दी किस मकसद के लिए जाती है। अगर वो मकसद और हदफ समझ में आ जाएगा तो खुद को समझ में आ जाएगा कि इन दोनों को हमने मुख्तलिफ खर्च किया है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी है, मुख्तलिफ सलाहियतें दी है, लेकिन दोनों के लिए मुसावी रास्ता खुला रखा है। किस काम के लिए? उस मकसद और हदफ के लिए। वो मकसद और हदफ क्या है? वो मकसद और हदफ है सआदत और कामयाबी और कुर्ब खुदा। खुदा कहता है कि खातून ये ना देख के तुझे घर में रखा है, ए मर्द ये ना देख के तुझे घर से बाहर भेजा जा रहा है, बल्कि ये देख के तुम दोनों के लिए हमने मुसावी अपॉर्चुनिटी रखी है कुर्ब खुदा के लिए। कुर्ब खुदा का जब मामला आ जाएगा, अल्लाह के नजदीक जाने का जब मामला आ जाएगा, तो हम तुम्हें किसी अपॉर्चुनिटी से महरूम नहीं करेंगे। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ इसलिए खल किया है ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर के एक मुकम्मल माशरा बना सको, एक दूसरे के अधूरेपन को दूर कर सको, एक दूसरे के खला को पूर कर सको। लेकिन ये दुनियावी खला खला नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनियावी खला का तुम्हारी कामयाबी और सआदत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जहां पर बात आ जाएगी कुर्ब खुदा की, तो अब इस्लाम इतना हसास है और इतना सेंसिटिव है इस मामले में कि मर्दों से कहेगा कि जाओ तलवारें उठाओ, जाकर के जंग करो, जिहाद करो, अपना जिस्म कटवाओ, जख्म खाओ, गर्मी में रहो, मुशक्कतें बर्दाश्त करो। लेकिन खातून से कहेगा ये ना समझना कि हमने ये अपॉर्चुनिटी इसके लिए खोली है तुम्हारे लिए नहीं खोली। क्यों? क्योंकि मामला कुर्ब खुदा का मामला है, अब तुम्हारे लिए मुसावी अपॉर्चुनिटी खोल रहा है। अगर कोई खातून घर में रहे और घरदारी के उमूर को अंजाम दे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसे वही सवाब मिलेगा कि जो मुजाहिदीन को मिलता है। क्यों एक जैसा सवाब मिलेगा? क्योंकि कुर्ब खुदा की अपॉर्चुनिटी के मामले में हम दोनों के लिए मुसावी रास्ते रखना चाहते हैं। जितनी जल्दी ये खुदा तक पहुंच सके उतनी जल्दी ये भी खुदा तक पहुंच सके। तो अब ये मुसाला मुकदमा था कि जिसके बाद मैं आपके सामने कुरान मजीद की आयत पेश करना चाहता हूँ। सर्वपरि मोहम्मद वाले दुनियावी उमूर की बात होगी, मुख्तलिफ खल किया है। क्यों? क्योंकि उसका कोई हदफ है, हमने उससे कोई नतीजा लेना। अगर सबको एक जैसा खल करते, कोई यूनिक ना होता, कोई एक दूसरे डिफरेंट ना होता, तो दुनिया आगे नहीं चल सकती। डिफरेंट चीजें आपस में दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन ईजाद करती है तो दुनिया आगे चलती है। ये इस दुनिया का निजाम इस तरह से रखा। लेकिन कुर्ब खुदा के मामले में कुछ सारी अपॉर्चुनिटीज है। कुरान मजीद क्या है? लेकिन जब कुर्ब खुदा की बात आती है तो खुदा किस तरह मुखातिब होता है? इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इस्लाम के मामले में हम किसी को कोई हमारा फेवरेट नहीं, ना मर्द ना औरत। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات। यानी कुर्ब खुदा के जितने मामले हैं वहां पर परवरदिगार, हालांकि अरबी ज़बान के अंदर कहा जाता है कि जब मर्द के लिए मुज़क्कर जमा कसरे का इस्तेमाल किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिमीन, तो मुस्लिमीन के अंदर मुस्लिमात शामिल है, मोमिनीन के अंदर मोमिनात शामिल है, कि वो सारे के सारे जिन्स के लोगों को बयान करने के लिए मुस्लिम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपने लफ्जी माना से बढ़ करके ज्यादा मसादी को शामिल कर देता है। अब ये खुद एक अरबी बहस है बहुत की, मैं उसे यहाँ पर बयान करना नहीं चाहता, लेकिन परवरदिगार जानबूझ कर यहाँ पर मुस्लिमीन के लफ्ज मुसलमान को शामिल नहीं कर रहा, बल्कि अलग से लेकर के आ रहा है मुस्लिमीनों मुसलमान। क्यों? ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके कुर्ब खुदा के मामले में अपॉर्चुनिटी परवरदिगार को ताल्लुक मुसावी रखी। ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات। खुसूसियात परवरदिगार बता रहा है, हर जगह मुज़क्कर और मुअन्नस इसी लेकर के आ रहा है, और तमाम तर खुसूसियतें वो हैं जो कुर्ब खुदा के मामले में। दोनों के लिए है, ईमान है दोनों के लिए है, कनाअत है दोनों के लिए है, सच्चाई है दोनों के लिए है, सब्र है दोनों के लिए है, खुशु है दोनों के लिए है, रोजा है व साइमीन व साइमा दोनों के लिए है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत है दोनों के लिए, क्योंकि ये तमाम के तमाम वो मामलात हैं कि जो कुर्ब खुदा के मामले और कुर्ब खुदा के मामले के अंदर परवरदिगार किसी डिस्क्रिमिनेशन का किसी रेसिज्म का कायल नहीं है कि किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, कुर्ब खुदा के सारे रास्ते सबके लिए मुसावी खुले हुए हैं। अगर कुरैश का भी कोई होगा और कुर्ब खुदा के रास्ते में पीछे रह जाएगा तो उसे पीछे रखा जाएगा, और अगर बिलाल हबशा का सियाह गुलाम भी होगा और कुर्ब खुदा के रास्ते में आगे होगा तो उसे आगे का सफर किया जाएगा। ये वो मकान के जो परवरदिगार और इस्लाम औरत को देना चाहता है, इसीलिए आप हजरत इब्राहिम के माजरे में भी आप देखिए और सैयद शोहदा के माजरे में भी देखिए कि माँ की वो अजमत है, माँ की वो कुवत है, माँ की वो मंजिलत है कि माँ की वो अजमत है, वो मुकद है, वो मंजिलत है कि ऐसे अफराद को जन्म देती है कि जो जब मुआशरे में आते हैं तो इतने बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं कि इब्राहिम बुत शिकन को सारी तारीख याद रखने पर मजबूर है, हुसैन सैयद शोहदा को सारी तारीख याद रखने। किसका नतीजा है? ये उस माँ का नतीजा है जिसने ये समझ लिया है कि कुर्ब खुदा की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए मुसावी है और मैंने कुर्ब खुदा के रास्ते पर वक्त से पीछे नहीं रहना बल्कि उनके साथ साथ उससे आगे सफर। इस तमाम तर मुकदमे को आप लेकर के आइए करबला में, और जब आप करबला में लेकर के आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि माएं एक दूसरे से बच्चे बचाने पर नहीं लड़ रही, बच्चे गंवाने पर लड़ रही है। अब अगर इस सारे मुकदमे के साथ करबला को समझा जाए तो करबला की माओं की अजमत आसमान के सितारों की मानिंद हो जाएगी कि दुनियावी माएं जो होती है जो दुनिया की अपॉर्चुनिटीज से इस्तेफादा करना चाहती है वो अपना बच्चा बचाने पर लड़ती है, लेकिन जो कुर्ब खुदा की अपॉर्चुनिटी से इस्तेफादा करना चाहती है वो माँ दूसरी माँ से अपना बच्चा बचाना नहीं चाहती बल्कि दूसरी माँ से पहले अपना बच्चा लुटाना चाहती है। यह करना इस सारा का सारा इस्लाम जहां हमें अमली होता हुआ नजर आ रहा है, औरत का वो मुकाम जो इस्लाम ने दिया है करबला में हमें नजर आ रहा है कि कोई औरत पीछे नहीं रहना चाहती, हर औरत चाहती है और मोहम्मद तो पहले कुर्बान होना। फरमा कहती है कासिम तुम आगे आगे रहना, उम्मे लैला कहती है अली अकबर तुम पीछे ना रह जाना, और एक माँ वो है जो कुर्ब खुदा के इस रास्ते पर ये सोच रही है मैं क्या हुसैन के लिए पेश करूँ, मेरी गोद में तो सिर्फ एक 6 साल का बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, और जब हुसैन ने यह कलाम सुना हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, बीबी तुझे नहीं मालूम कुर्ब खुदा के रास्ते पर तेरा यह सफर कुर्बान होगा। अल्लाह नहीं इंसान बयान कर सकता हुसैन अपने आली की इस मुसीबत को, वाकई अली असगर की मुसीबत मुसीबत है जो हुसैन की मजलूमियत की इंतहा है, इंतहा वो मजलूमियत कि हजरत आयतुल्लाह फातिमिया कहते हैं कि किसी मुकाम पर परवरदिगार की जरूरत पेश ना आई कि हुसैन को तसल्ली दे, लेकिन हजरत अली असगर की शहादत का मकाम था कि आसमान से निदा आई ऐ हुसैन तुम फिक्र मत करो हम इसे जन्नत में सैराब करें, परवरदिगार ने तसल्ली दी जिस मुकाम पर वो है अली असगर की शहादत। इतनी सख्त है मौला सैयद शोहदा की, मर्दों की जंग थी अजीजों, बच्चों की जंग नहीं थी, बच्चा दुश्मन कभी आ जाए ना इंसान उसे नहीं मारता, बच्चा दुश्मन कभी आ जाए ना इंसान उसे प्यासा नहीं लगता। हजरत आयतुल्लाह अंसारिया कहते थे कि एक 6 माह के बच्चे को सैराब होने के लिए कितना पानी चाहिए था जो यजीद के लश्कर ने न दिया, कितना पानी चाहिए, एक 2 घूंट पानी ही तो चाहिए था, 6 माह का बदन था कितने पानी से सैराब हो जाता, 2 घूंट पानी से 6 माह का बच्चा सैराब हो जाता, लेकिन अल्लाह है गुर्बत फरजंद फातिमा कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से बयान किया जाए। हुसैन इब्न अली ने कहा कि नासिर इब्न सुन्नी रोने की आवाज बुलंद हुई खैमों से, हुसैन खैमों की तरफ आए, मैं भी जिंदा हूँ, रो क्यों रहे हो? कादी असलम ने अपने आप को चूल्हे से गिरा दिया है, अतश का आलम है, बच्चा मरने वाला है, 3 दिन की प्यास है, मुरझा गया है बच्चा, सफेदी छा गई है चेहरे पर, और अब हुसैन ने आगे लेकर के चले, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। तो ये जो लेकर के चले ना कुछ मांगने के लिए, खुद एक बहुत सख्त मरहला है वो, कि जिसने जिंदगी में किसी शय का सवाल न किया हो, वो किसी के सामने हाथ फैलाकर के कुछ मांगे, और मांगे भी तो क्या मांगे, पानी मांगे, बहुत सख्त मरहला है। इस मरहले को अगर महसूस करना है, दबीर ने इस मरहले को महसूस किया अपने बरसिए में बंद का, ताकि एक एक कदम पर सोचते थे सिद्दे मुस्तफा, ले तो चला हूं और मैं अभी से कहूंगा क्या, ना मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, हुसैन को मांगना नहीं आता, फातिमा ने हमेशा बिन मांगे हुसैन को दिया है, अली ने हमेशा बिन मांगे हुसैन को अता किया है, कर ना मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूंगा तो वो देंगे क्या भला, और पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, बच्चे की जान चाहेगी और आबरू मिली, बच्चे की जान चाहेगी और आबरू मिली। एक कफन लेकर के आए, अल्लाह ने कहा या कौम इल्लम तरहमूनी फरहमू हादर तिफ्ले रदी, मुझ पर रहम नहीं करते, इस बच्चे पर तो रहम करो, ये दूध पीता बच्चा है, माँ का दूध खुश्क हो गया है, प्यास से तड़प नहीं पा रहा, बल्कि प्यास से सफेदी छा गई है इसके वजूद पर। एक वो मकाम आया अजीजों कि वही बच्चा जिससे इतना प्यार था कि धूप से बचाने के लिए हवा के दामन डाल करके लाए थे, अब वो मकाम आया कि आगे बढ़कर जमीने करबला पर रख दिया, अगर मुझे पानी नहीं पिलाना चाहते, अगर तुम समझते हो मैं पानी पी लूंगा, आगे बढ़ो औलाद वालों, आगे बढ़कर इस मेरे छेदना के बदन ने अली असर को पानी पिलाओ। एक मरतबा वो मौका आया, कोई आगे न बढ़ा, हुसैन ने आगे बढ़कर अपने बच्चे को उठाया और गले से लगाया, कहे हुज्जत खुदा के बेटे अपनी हुज्जत को तमाम कर दे। एक दफा अली असर ने अपनी नन्ही सी जबान अपने होठों पर फेरना शुरू की, वहां का इत्ता कलामल हुसैन, वहां हुमला ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा आपके सामने, लहलाता हुआ तीर चला, और दो जुमले मकसद से सुन लीजिए, का सुबह हफ्ते लो मेरा लोग ने मेरा लोग, बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सिवा हो गया। अरे 6 माह के बच्चे की गर्दन होती कितनी है, 6 माह के बच्चे का कद होता कितना है, अरे तीर का कद गई गुना बड़ा था अली असगर से, मेरा लोग ने मेरा लोग ने एक कान से दूसरे कान तक बच्चा सिवा हो गया, तीर आकर के बेबस हो गया। हुसैन इब्ने अली के बाजू में तो दूसरा जुमला सुन सकोगे अजीज को, फयद गालिबो सभी हो अला यदिल इमाम, गर्दन इतनी छोटी थी कि तीर लगा तो अब गर्दन धड़क करके रह गई, बदन से जुदा हो गई, अब जो गर्दन धड़क गई वो खून निकलना शुरू हुआ, खून निकलना शुरू हुआ। एक दफा हुसैन ने चुल्लू रखा और चुल्लू भर खून आया अली असगर के बदन से, आसमान की तरफ फेंका, जो हाथों पर खून रह गया था उसे अपनी दाढ़ी पर मला, हाकजा अल्ली जद्दी रसूल अल्लाह لا ورحمة الله للقوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بعدين باب الحوائج لم يسقط الواسطة بحر دیا. حسین کے اس ننے بچے کا واسطہ کہ جو دنیا کی حاجتیں پوری کرتا ہے پروردگار، تمام تر مومنین کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرما پروردگار. دنیا میں حسین عطا کیا ہے، آخرت میں حسین عطا فرما. دنیا میں حسین کا راستہ، آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگار. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ساتھ مل کر خون کربلا کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. معذرت میں حسین.